ओम शांति। हम सब आत्माओं का विशेष भाग्य है जो भगवान ने स्वयं हम आत्माओं को अपना बना लिया। भगवान की कृपा दृष्टि हम आत्माओं पर पड़ी जिससे हमारा तीसरा नेत्र खुल गया, जिस तीसरे नेत्र से भगवान को देखते भी हैं और बात भी करते हैं। ये तो बाबा की विशेष कृपा दृष्टि है। जिस कृपा दृष्टि का ही फल है तीसरा नेत्र खुलना। वैसे तो संसार की सर्व आत्माएं भगवान के बच्चे हैं, लेकिन उन आत्माओं पर बाबा की कृपा दृष्टि नहीं पड़ रही है। फल भक्त भी खूब कर रहे हैं, दान पुण्य भी कर रहे हैं, फिर भी कृपा दृष्टि परमात्मा की उन पर नहीं पड़ रही है, जिससे उनका भी तीसरा नेत्र खुल जाए। आप लोगों को अनुभव होगा कि कितनी भगत आत्माएं या दान पुण्य करने वाली आत्माओं को आप कितना भी ज्ञान सुनाते हो, लेकिन वो मानते ही नहीं हैं। क्या कारण है जो उनकी बुद्धि में यह बात बैठती ही नहीं, अर्थात उनका तीसरा नेत्र क्यों नहीं खुलता है? भगवान की कृपा दृष्टि उन पर क्यों नहीं पड़ती है, जबकि वो आत्माएं भी परमात्मा की ही संतान हैं? क्या कारण है? उसका मुख्य कारण है कि हम आप सब आत्माएं भगवान को सच जे दिल से चाहते थे। वो आत्माएं सच्चे दिल से भगवान को नहीं चाहते हैं, इसलिए उनका तीसरा नेत्र नहीं खुलता है। जैसे देखो, अगर वो भगवान की भक्ति करते भी हैं तो आजकल भक्ति दिखावा की है। आप बड़े बड़े मंदिरों में देखा होगा कि आरती जब होती है तो कैसेट बजती है, कैसेट आरती गाती है, कैसेट कीर्तन गाती है। अब अगर कैसेट कीर्तन गाएगी तो मिलेगा किसको? यह दिखावा है। मन के अंदर भगवान के प्रति प्रेम नहीं होगा, लेकिन इतना लंबा चौड़ा तिलक लगाएंगे दिखाने के लिए कि हम ऐसे हैं। अगर दान पुण्य भी करते हैं तो 10 रुपया भी अगर देंगे तो सोचेंगे और पुरुषार्थ भी करते हैं कि सबसे आगे मेरा ही नेम प्लेट लगाया जाए, नाम अपना पहले चाहते तो दिखावा चाहते हैं। सच्चे दिल से भगवान को नहीं चाहते। दूसरी बात, भक्ति करते ही हैं भगवान से बिजनेस करने के लिए, राजी करने के लिए नहीं, बिजनेस करने के लिए। क्या? हे भगवान, मेरा यह काम हो जाए तो मैं ये करूंगा। अर्थात हे भगवान, मुझे बिजनेस में 20,000 रुपया मिल जाए तो मैं 5,000 आपके नाम खर्च कर दूंगा, दान कर दूंगा। अर्थात 20,000 दो तो मैं 5,000 दे दूंगा। अब अगर वहां ये मनोकामना नहीं पूरी हुई, फिर उसको छोड़कर दूसरे के पास भागेंगे। अर्थात भगवान से अपना स्वार्थ सिद्ध कराना चाहते हैं, भगवान को राजी करना नहीं चाहते। तो जब भगवान से स्वार्थ सिद्ध कराना चाहते हैं तो ऐसे पर भगवान राजी नहीं होता है। चाहते हम सब भी थे कि हमारा ये काम हो जाए तो हम ये करेंगे, चाहते हम भी थे, लेकिन हमारे चाहने में अंतर ये था कि हम सब सोचते थे अपने ईष्ट को राजी करो, अगर ईष्ट राजी हो जाएगा तो हमारी मनोकामना स्वतः पूरी हो जाएगी। अपना लक्ष्य था ईष्ट को राजी करना और उनका लक्ष्य है अपना काम निकलवाना, स्वार्थ। इस कारण से आप उनको कितना भी ज्ञान सुनाते हो लेकिन उनकी बुद्धि में नहीं बैठता। क्यों? सच्चे दिल से भगवान को नहीं चाहते। तो भगवान ने हम आप सब आत्माओं को अपना बना लिया। बाबा ने अपना फर्ज पूरा किया। अब हम आत्माओं का भी बाप के प्रति कुछ फर्ज है। क्या फर्ज है? आपका बाप के प्रति क्या फर्ज है? यही कि जो बाप चाहता है वो हम आत्मा करके दिखाएं। यही हमारा फर्ज है। बाप क्या चाहता है? बाप यही चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे समान बन जाएं। ये बाप चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे समान बन जाएं, और हम बच्चे भी यही चाहते हैं कि बाप समान बन जाए। तो जब हमारी चाहना और बाबा की चाहना दोनों की इच्छा एक ही है, फिर बाप समान बनने में देरी क्यों लग रही है? जब आप भी चाहते, बाबा भी यही चाहता, फिर देरी क्यों है? इसका कारण पांच है। पांच बातों के कारण हम स्वयं को बाप समान बना नहीं पा रहे, पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन पांच बातें हैं जो हम आत्मा जो चाहती हैं बाप समान बने वैसा नहीं बन पाती है। वो पांचों बातें हैं। पहली बात है, कहीं न कहीं श्रीमत की अवज्ञा हो रही है। मनसा वाचा कर्मणा में कहीं न कहीं श्रीमत की अवज्ञा है। दूसरा कारण है कि यथार्थ विधि से अभ्यास नहीं कर रहे हैं। योग लगा रहे हैं, लेकिन यथार्थ विधि से अभ्यास नहीं कर रहे। तीसरा कारण है कि आत्मा में इतनी शक्ति नहीं है जिसको मनोबल या विल पावर कहते हैं, जिसके आधार से कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर आ जाए। चौथा कारण है, पूर्व संस्कार विघन डालते हैं। अगर यह चारों बातें ठीक है, फिर भी जैसा चाहते हैं वैसा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका कारण है कि आत्मा के ऊपर पास्ट जन्मों का इतना बोझा है, इतना पाप कर्मों का खाता है, जो आत्मा को भगवान से लेने नहीं दे रही है। आत्मा चाहती है लेना, लेकिन पास्ट कर्म का खाता आत्मा को लेने नहीं दे रही। अब अगर यह पांचों बातें यथार्थ रूप से प्रैक्टिकल जीवन में आ जाए, तो बाप की चाहना और आपकी चाहना एक हो जाएगी, अर्थात समान बन जाएंगी। पहली बात है श्रीमत की अवज्ञा। हम सब बच्चे बाबा की जो बड़ी अवज्ञाएं नहीं करते हैं, लेकिन जो बड़ी आज्ञा है श्रीमत है उस पर तो अटेंशन दे रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी आज्ञाओं पर अटेंशन नहीं दे रहे। तो यह छोटी छोटी भगवान की आज्ञा की अवज्ञा थोड़ा थोड़ा करते बहुत बड़ा बोझ बन जाती है। अगर बोझ बन गई तो आत्मा हल्की होकर बाप के पास बैठ नहीं पाती, बाप से सर्व शक्तियां ले नहीं पाती, बोझ है ऊपर उड़ने नहीं देता है। जैसे ऊपर का अभ्यास करोगे कुछ न कुछ यहां की बात याद आ जाएगी, फिर नीचे आ जाओगे, क्योंकि जिस संकल्प बोल कर्म में भगवान की अवज्ञा होती है उस कर्म का हिसाब बन जाता है, और वह हिसाब योग के समय नीचे खींचता है, अर्थात वह बात याद आती है। हिसाब बनने का सुंदर दर्पण है योग में बैठे जो बात याद आई, सिद्ध है कि उस बात से हमारा कर्म का खाता बन चुका है, वह कर्म अकर्म नहीं बना, वह कर्म सुकर्म नहीं बना है, लेकिन कर्म का खाता बन गया है। जैसे छोटी सी बात है, बाबा कहता है कि आप बच्चों की चाल फरिश्ते जैसी होनी चाहिए, बोल बहुत मीठे होने चाहिए, साधारण श्रीमत है। अब अगर आप चाल सिर्फ चलते हो, लेकिन चलो बाबा के पास,
प्रभु का ध्यान कीजिए।
जैसे हम बच्चे चलते हैं साकार बाबा के समय, अगर कोई बच्चा चलते समय उसके चप्पल या जूता की या पैर की आवाज आ जाती थी, खिस पिस खट पट थोड़ी भी आवाज आती थी, तो बाबा कहता था ये ब्राह्मण नहीं लेकिन कलियुगी मानव है। मम्मा कहती थी जो रॉयल्टी से चल ही नहीं सकता है, जिसका चप्पल घिस पिस करता है उसका पद भी घिसा पिटा ही होगा। अगर रॉयल्टी से चल नहीं सकते तो रॉयल पद कहां से आएगा? साधारण बात, आप भोजन करते हो, अगर भोजन करते समय जो आत्मा बाप की याद में रहकर भोजन नहीं कर सकती है वो योगी बनने का तो सवाल ही नहीं। अन्न का प्रभाव मन पर है, दूसरा भगवान की अवज्ञा हो रही है अगर याद में रहकर नहीं खा रहे। अपने दिल से पूछो कि कितनी हम अवज्ञाएं करते सोने से लेकर और फिर उठने तक या उठने से लेकर सोने तक, एक एक कदम की श्रीमत मिली हुई। नहीं चलते हैं उसका बोझ बनता है। तो जब स्वयं को श्रीमत प्रमाण चलाओ तब आत्मा का बोझ हल्का होना शुरू हो और उड़ना शुरू करे। दूसरा है, कई बच्चे श्रीमत प्रमाण स्वयं को चलाते भी हैं लेकिन यथार्थ विधि से योग का अभ्यास नहीं करते। योग करते हैं लेकिन यथार्थ विधि से नहीं। अगर यथार्थ विधि नहीं है तो फल नहीं मिलेगा। उदाहरण के रूप से आप लोग क्लास में आ रहे थे, चल करके आए, चले तो यहां पहुंच गए, यथार्थ रास्ते पर आए तो पहुंच गए। अगर आप यथार्थ रास्ते पर न चलकर इधर के बजाय उस तरफ चलते तो कितना भी चलते रहते लेकिन पहुंचते नहीं ना। तो चलना बड़ी बात नहीं है लेकिन यथार्थ विधि से चलना बड़ी बात, योग करना बड़ी बात नहीं है लेकिन यथार्थ विधि से योग करना बड़ी बात। अगर यथार्थ विधि से योग नहीं करेंगे तो प्राप्ति नहीं होगी। यथार्थ विधि है, बाबा कहता है कि अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो, ये बाबा कहता है। विधि भी यही यथार्थ है लेकिन क्या हम स्वयं को आत्मा समझ पाते हैं? आत्मा समझना अर्थात स्वयं को इस शरीर से डिटैच करना, यह शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूं, ये अलग की अनुभूति हो, इसको कहते हैं यथार्थ विधि। अलग की अनुभूति हो कैसे पता पड़ेगा? एक करके देखो। मान लो जिस समय आप स्वयं को शरीर से टोटल डिटैच करके रखा है, अगर इस शरीर में कहीं खुजली हो रही है तो ऐसा महसूस होगा किसी दूसरे के शरीर में हो रही। इतना शरीर के भान से न्यारे हो जाए। यह अगर यथार्थ अभ्यास स्वयं का इतना कर लो शरीर से न्यारे होने का, फिर देखो आत्मा कितना जल्दी बाप समान बन जाती। तीसरा है पूर्व संस्कार विघन डालते। संस्कारों को खत्म करने के लक्ष्य पर सब लगे हुए, लेकिन संस्कारों को खत्म करने में जो मेन विघन है वो है मन की शक्ति की कमजोरी। जो चौथी बात बताई थी कि मनोबल नहीं है, विल पावर नहीं है, जो हम जैसा चाहें वैसा ही सोचें, जैसा चाहें वैसा ही करें, पूर्व संस्कार ना इमर्ज हो पाए, इसका मेन कारण है आत्मा में विल पावर की कमी। अब विल पावर कैसे आएगी? बहुत सुंदर विधि है विल पावर की प्राप्ति का आधार है दो शब्द है विल पावर। आपके पास जो कुछ भी है सब भगवान के आगे विल कर दो। तन मन धन संकल्प श्वास सब बाप के आगे समर्पण कर दो, विल कर दो, तो रिटर्न में भगवान पावर दे देगा, शक्ति दे देगा। बिना बिल किए मिल कुछ नहीं सकता है। भल बाबा आपका बाप है, बाप होते हुए भी इतना है कि बाप होने के नाते स्वर्ग में जाओगे लेकिन पद कुछ नहीं मिलेगा। पद मिलने का आधार है विल करना। जब तक आप विल करोगे नहीं, जितना करोगे उसका पदम गुना पावर के रूप में मिलेगा। उदाहरण के रूप से भक्ति की बात सुनी होगी कि श्री कृष्ण और सुदामा दोनों कितने गहरे मित्र थे। थी ना गहरी मित्रता। और श्री कृष्ण ये जानता था कि सुदामा बहुत मुसीबत में है, जानता था। और श्री कृष्ण संपन्न था, सक्षम था, सुदामा को दे सकता था लेकिन दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? जब सुदामा ने दो मुट्ठी चावल दिया तब दो लोक का राज दिया। ये नियम है, जब तक आप बिल करोगे नहीं तब तक पावर आएगी नहीं। जितना बिल करोगे उतना पावर आएगी, पहली बात। दूसरी बात, आप जो चाहें सो कर सकें, उसके लिए आपके मनोबल का आधार है भगवान का वरदान। जब वरदान मिल जाता है तो वरदान काम करता है, फिर आपकी मेहनत खत्म हो जाती है। जैसे अपनी गुलजार दादी है, जिस तन में बाबा आता है, जो पहले मिल चुके देखा है, गुलजार दादी जब शुरू में हैदराबाद सिंध में ही इस ओम मंडली में आई थी, तो उस समय गुलजार दादी बहुत भोली थी, मन की भोली, लगन अच्छी थी तपस्या की, बोल बहुत मीठे थे तपस्या के कारण। तो इसकी तपस्या और लगन देख करके साकार बाबा ने, बाप दादा तो एक ही हैं, उस समय वरदान दिया था कि इस बच्ची के नयन बड़े रूहानी हैं, आगे चल बहुत सेवा करें। इस बच्ची के बोल बहुत मीठे हैं, पाणी बहुत सेवा करेगी। इस बच्चे की तो चेहरा रूहानियत से भरा हुआ है, बहुत सेवा करेगा। देखो उस समय का वरदान, अब गुलजार दादी को मेहनत नहीं करनी पड़ती, भगवान खुद ही बैठ करके नयन के द्वारा, बोल के द्वारा और मस्तक के द्वारा सेवा कर रहा है। तो वरदान लेने में मेहनत है, लेकिन जब वरदान मिल जाता है तो फिर वरदाता काम करता है, आपकी मेहनत खत्म हो जाती है। जैसे यादगार रामायण में दिखाया है कि सारी सेना में, बंदर सेना में हनुमान जी के पास ताकत ज्यादा थी, जो चाहे सो कर सकता था। हम आप सब भी भगवान की बंदर सेना में हैं। बंदर सेना का क्या काम था? सीता माता की खोज करके राम से मिलाना, और यही काम अपना सबका है कि जो बाबा से बिछुड़ी हुई आत्माएं हैं, उनको ढूंढ करके बाबा से मिलाना। तो सारी बंदर सेना में हनुमान जी के पास ताकत ज्यादा थी, क्या कारण था? क्या कारण था जी? अच्छा, आप लोग जो कुछ भी बातें बता रहे हो, वो आप स्वयं में क्यों नहीं धारण कर लेते? जो विशेषता हनुमान में बता रहे हो, वो आप क्यों नहीं धारण कर लेते? उस विशेषता को धारण करने की भी शक्ति हनुमान के पास कहां से आई? उस शक्ति की प्राप्ति का आधार था भगवान का वरदान, राम का वरदान। वरदान की प्राप्ति के कारण हनुमान के पास इतनी ताकत थी, अब हम आप भी अगर भगवान से वरदान प्राप्त कर लें, तो हम आप भी जो चाहे सो कर सकते। आपके मन में प्रश्न आता होगा कि बाबा तो रोज ही वरदान देता है, लेकिन भगवान देता है, आपको मिलता भी है, क्योंकि मिलेगा उसी को जो वरदान के लायक होगा। अगर वरदान के लायक नहीं होगा तो वो वरदान आपको मिलेगा नहीं, भगवान देगा। जैसे आप रास्ते में जा रहे हो, किसी व्यक्ति को कहो रिगार्ड के रीति से, पिताजी पिताजी कहकर बुलाओ, वो रुक जाएगा, आपको प्यार देगा या कुछ थोड़ा बहुत दे देगा, अपनी प्रॉपर्टी दे देगा, आपको देगा। पिताजी कहने से प्रॉपर्टी मिल जाएगी? नहीं ना, प्रॉपर्टी तो अपने बच्चे को ही देगा, अर्थात जो प्रॉपर्टी के लायक है उसी को मिलेगा। तो बच्चा बनना ही प्रॉपर्टी के लायक बनना है। यहां भगवान जो वरदान देता है वो विशेषताएं हो तब वरदान आपको मिलेगा। तो वरदान की प्राप्ति का आधार है वरदाता को राजी करना। जब राजी होगा तभी तो वरदान देगा। राजी करने की सहज विधि है, आज से अभ्यास करके देखो और कर सकते हो। सहज विधि है, आप जो भी संकल्प करो या संकल्प उठे, तुरंत चेक करो कि यह संकल्प भगवान को पसंद है। अगर पसंद है तो चलाओ, नहीं तो परिवर्तन कर दो। जो बोल बोलो, अंदर चेक करो, क्या मेरे बोल से भगवान खुश हो रहा है? अगर है तो बोलो, नहीं तो परिवर्तन कर दो। आप जो कर्म करो, चेक करो कि मेरा कर्म करते हुए देखकर भगवान राजी हो रहा है, कह रहा है वाह मेरे शाबाश बच्चे वाह। अगर ऐसा कर्म है तो करो, नहीं तो परिवर्तन कर दो। जब आपका हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म भगवान को राजी करने वाला होगा, तब भगवान से वरदान मिलेगा। सहज है या मुश्किल है? क्या समझते हैं? सहज है ना? अभी से अभ्यास करना, सिर्फ अटेंशन की जरूरत है, बहुत सहज है। लेकिन वही संकल्प बोल कर्म भगवान को राजी करने वाला कर सकता है जो दो बात का त्याग कर सकता है। वो दो बातें हैं, देह भान और लोकलाश। जो इन दो बातों को त्याग कर सकता है वो भगवान को राजी कर सकता है। यादगार रामायण में दिखाते हैं कि हनुमान जी ने दोनों बातों का त्याग किया तब वरदान मिला। दिखाते हैं कि एक बार सीता जी स्नान करके आई थी, मांग में सिंदूर डाल रही थी, तो हनुमान जी ने सिंदूर डालते हुए देखकर पूछा, माता जी ये क्या कर रही हो? तो सीता जी ने कहा, सिंदूर डाल रही हूं। हनुमान जी ने पूछा, इसे क्या फायदा होगा, क्यों सिंदूर डालती हो? तो सीता जी ने कहा कि इसको देखकर राम जी प्रसन्न होते हैं और उनकी आयु बढ़ती है। यह शब्द हनुमान जी ने सुना कि इसको देखकर राम जी प्रसन्न होते हैं, हनुमान जी भाग कर गए और ढेर सारा सिंदूर ले आए और ला करके अपने पूरे शरीर पर खूब खुशी से सिंदूर लपेटने लगे, लेप करने लगे। तो राम जी उधर जा रहे थे तो इतना सिंदूर लगाते हुए देखकर राम जी ने पूछा, हनुमान जी क्या कर रहे हो? अरे बोला, प्रभु जी प्रसन्न हो जाओ, प्रभु जी प्रसन्न हो जाओ, बहुत खुशी में थे। तो राम जी ने कहा, क्या बात है, क्या प्रसन्न हो जाए? बोला, प्रभु जी जब माता जी जरा सा सिंदूर लगाती हैं, उसको देखकर खुश हो जाते हो, तो अगर मैं ढेर सारा सिंदूर लगा लूंगा तो कितना जल्दी प्रसन्न हो जाओगे। उसी समय राम जी ने हनुमान को वरदान दे दिया और तब से हनुमान के शरीर में सिंदूर का लेप लगाया जाता है। अब देखो, हनुमान जी ने दोनों बात नहीं देखी। एक तो ये नहीं सोचा कि सारे शरीर में सिंदूर लग जाएगा, लोग हमें क्या कहेंगे, इसकी चिंता नहीं की, देह भान नहीं आया कि लोग क्या कहेंगे। यही सोचा, जिस विधि से राम जी राजी होते हों वही करना है। दूसरा यह भी नहीं सोचा कि अगर इतना सिंदूर लग जाएगा तो बंदर समाज मुझे अपने समाज में रहने भी देगी या समाज से निकाल देगी, ये भी नहीं सोचा। सिर्फ यही सोचा कि जिस विधि से राम राजी होते हों वही मुझे करना है। अब यह अंदर से पक्का कर लो कि जिस विधि से मीठा बाबा राजी होता हो मुझे वही करना है, तो बाबा को राजी कर सकते, वरदान मिल जाएगा। टाइम हो गया है, फिर भी 2 मिनट में पूरा करते हैं। कई बार इन चारों बातों का ठीक होने पर भी हम जैसा चाहें वैसा अनुभव नहीं कर पाते। इसका कारण है आत्मा के ऊपर पास्ट कर्मों का बोझ बहुत है जो भगवान से लेने नहीं देती। चाहती है आत्मा लेकिन लेने नहीं देती है। इसकी छोटी सी बात भक्ति में बताते हैं, बात ब्राह्मणों की है लेकिन कहानी भक्ति की है। एक बार पार्वती जी ने, दुनिया में तो शिव शंकर को एक मानते हैं, शंकर से बोला कि आपके इतने ढेर सारे भगत हैं, उसमें कोई भगत गरीब है और कोई भगत अमीर है, आप गरीब भक्तों को अमीर क्यों नहीं बनाते हो जबकि आपके भगत हैं। तो शंकर जी ने कहा कि यह तो इनके कर्मों का फल है। तो पार्वती जी ने कहा, इनके कर्म का फल ये जाने, ये तो आपके आगे समर्पण हैं, आप इनको क्यों नहीं देते हो। तो शंकर जी ने कहा कि मैं इनको देता हूं, इनके कर्म के फल इनको लेने नहीं देते। तो पार्वती जी ने कहा, अच्छा मेरे सामने दो, मैं देखूं इनको कैसे नहीं मिलता है। तो शंकर जी ने कहा, ठीक है आज मैं दूंगा और देखना इनको मिलता है या नहीं। तो वो भगत जो रोज जाते थे पूजा करने मंदिर में, पूजा करके वापस आ रहे थे, तो भगवान ने रास्ते में ढेर सारा सोना चांदी मतलब रख दिया, अभी आएंगे रास्ते में ले लेंगे। और वहां लिखा हुआ था, ये भगवान के द्वारा आपको भक्ति का फल मिल रहा है, इसे स्वीकार करो। तो जो धनवान थे वो तो जैसे पहुंचे और देखा, वो तो और धनवान हो गए, उनको और मिल गया। इसके बाद जो गरीब थे, जब वो उस तरफ से आ रहे थे, तो आते हुए जहां धन पड़ा था उससे थोड़ी दूर पहले ही उनको संकल्प आया कि हम रोज इसी रास्ते से जाते हैं, कोई नया रास्ता तो है नहीं, आज आंखें बंद करके चलते हैं, देखें आंखें बंद करके कैसे चला जाता है। और आंखें बंद करके चले, जब वो खजाना पार हो गया फिर आंखें खोल दिया। अब यह बात अपनी है, भगवान हम सब बच्चों को कब देता है, या तो योग के समय या तो पढ़ाई के समय। तो जब योग करने बैठते हैं तो ऐसे लटक जाते हैं, सो जाते हैं, और जैसे सफेद लाइट हुई ऐसे बैठ जाते जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो जब तक भगवान दे रहा था तब तक तो सोए हुए थे। ऐसे दूसरे भगत आ रहे थे तो वो भी संकल्प पाया, रोज इसी रास्ते पर चलते हैं, आज हम भी आंखें बंद करके चलते हैं। लेकिन सोचा, पता नहीं शायद रास्ते में कहीं पत्थर वत्थर ना पड़ा हो, तो चलते चलते जरा सा ऐसे आंखें खोल के देख लेते थे और चलते रहते थे। तो रास्ते में खजाना आया लेकिन जरा सा ऐसे आंख झपकी थी, पता नहीं पड़ा कि खजाना है और पार हो गए। ऐसे यहां भी योग लगाने बैठते हैं, ऐसे झुटकाया फिर ऐसे बैठते हैं, फिर कोशिश करते हैं फिर ऐसे झुटकाया, झुटका खाते रहते, सोचते भी भगवान से लेना है और झुटका भी खाते रहे। तीसरे हैं कि जब वो आ रहे थे तो रास्ते में उनको संकल्प आया कि रोज इसी रास्ते से जाते हैं, चलो आज रास्ता बदल कर जाते, और वो रास्ता ही बदल दिया। यहां भी ऐसे ही होता है, बैठते हैं योग करने लेकिन रास्ता बदल देते हैं। क्या संकल्प करते हैं कि मैं आत्मा हूं, मेरा घर परम धाम है, संकल्प करेंगे परम धाम और याद आएगी ये दुनिया, लौकिक घर धंधा ये याद आएगा। मेरा सर्व संबंधी बाबा है, याद आएंगे यहां के संबंध। रास्ता ही बदल देते हैं, इसलिए गरीब के गरीब रह जाते हैं। अब यह जो योग करने या क्लास में कोई नींद करने नहीं आता है, लेकिन उनको नींद आ जाती है, क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा में पास्ट कर्मों का इतना बोझ है, जो वो बोझ भगवान से लेने नहीं देता है, चाहते हैं लेना लेने नहीं दे रहा है। अब क्या करें? फिर है तो सबके पास कम ज्यादा, क्या करें? इस बोझ को हल्का करने की विधि दो है। एक विधि है पावरफुल योग, जिसको बाबा ने कहा योग अग्नि का रूप ले ले, पावरफुल योग। लेकिन प्रश्न वही है कि पावरफुल योग ही तो नहीं लगता है, अगर लग जाए फिर तो बात ही खत्म हो जाए। तो दूसरी सहज विधि है, जितना हो सके धन से सेवा करो। धन मन को खींचता है, जहां धन जाता है वहां मन अवश्य जाता है। जितना हो सकता है उतना करो, लाख करोड़ की बात नहीं है, पांच दस की बात नहीं है, जितना हो सकता है उतना करो। हो सकने की परिभाषा क्या है? किसको कहा जाता है कितना कर सकते हैं बाबा के लिए? उदाहरण के रूप से मान लो आपके घर में इस समय जितनी आमदनी है, मान लो 100 रुपए की आमदनी है, उसमें आप कुछ सेंटर पर देते हो, कुछ परिवार का खर्चा चलाते हो, आपके पास एक पैसा भी नहीं बचता है जो आप और ज्यादा कर सको, मान लो, और आपसे कहा जाता है कि आप बाबा के घर में अपने तन मन धन को जितना हो सकता है सफल करो। अब प्रश्न है, आपके पास एक पैसा भी नहीं बचता था, लेकिन आपके घर में मान लो 5 मेंबर थे, और अगर छठा जन्म ले ले तो उसको पालोगे या मार डालोगे? कहां से आ गया उसके लिए, कहां से आ गया उसके लिए? तो जब उसके लिए निकल सकता है तो मीठे बाबा के लिए क्यों नहीं निकल सकता। इसको कहा जाता है जितना हो सके उतना करो। जब इस तरह से मन बाबा की तरफ लगे तब देखो आपका हिसाब किताब कितना जल्दी क्लियर हो जाए। तुरंत योग नहीं लग जाएगा, लेकिन धन धीरे धीरे खाता खत्म करता जाएगा और खत्म हो जाएगा। अच्छा, टाइम बहुत हो गया है। इस प्रकार से आप अपने इन पांचों बातों को संपूर्णता में ला करके आप अपना संकल्प और बाप का संकल्प एक करके समान बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।